नमो सब्बकाहूणं एतो पंच नमोकारो सर्वपापणाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वाररागादि वैनिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय श्री महावीराय ताईने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशे निर्विशेष मनसाय श्रीवीर स्वामिने नमः। कृतापराधेति जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पादयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो श्रीवीरजिननेत्रयो। आज पर्युषण महापर्व का चौथा दिन है। आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। वैसे पूरा पर्युषण पर्व और पर्युषण पर्व की प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। उस पर्युषण पर्व की प्रत्येक क्षण में हमें साधना, आत्मकल्याण, परोपकार, जिन भक्ति, साधर्मिक भक्ति, जीव दया, चैत्य परिपाटी, तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि विविध प्रकार के आत्मोन्नति के अनुष्ठान करने चाहिए। इस पर्युषण पर्व के अवसर पर हम परमात्मा महावीर जो वर्तमान 24 के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ऋषभदेव भगवान इस अवसर पर इनके प्रथम तीर्थंकर और पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर। इस अवसर पर इनके अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी भगवान हुए और काल का ये विधान है कि एक कालचक्र के दो विभाग में एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी प्रत्येक काल विभाग में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। तीसरे आर्य के अंत से लेकर चौथे आर्य के अंत तक ये 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है। इस 24 तीर्थंकर भगवंतों के जन्म की जो क्षण होती है अत्यंत पवित्र, अत्यंत उत्तमोत्तम होती है। प्रश्न हमारे मन में ये उठ सकता है कि 24 की संख्या ही क्यों, क्यों 25 नहीं, क्यों 23 नहीं, 24 की ही संख्या क्यों? ये प्रश्न शास्त्रकारों के सामने भी आया और उन्होंने जो जवाब दिया है, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उन्होंने जो जवाब दिया है उस पर गौर करने जैसा है कि इस संसार में पूरी अवसर्पिणी या अवसर्पिणी के काल के दरमियान केवल 24 बार ही ऐसे उत्तम मुहूर्त आते हैं जिसमें सभी ग्रह उच्च के होते हैं, उसके अलावा और ऐसा कोई समय नहीं आता है कि जिस समय इतना उच्च कोटि का अवसर हो। ये एक जवाब दिया। और हम जब भक्तामर स्तोत्र में परमात्मा की स्तुति करते हैं और इस भक्ताम इस अवसर पर परिश्रम पर्व के अवसर पर एक जो विधान हमें करना है वो परमात्मा भक्ति है। परमात्मा भक्ति हमारे लिए एक निमित्त है, परमात्मा भक्ति एक लक्ष्य है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पारिभाषिक शब्द हैं, जो टेक्निकल टर्म्स के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ जब हम समझने लगते हैं तो उसके पीछे जो रहस्य है उस रहस्य का हमें बोध होने लगता है। निमित्त का अर्थ है कि परमात्मा की प्रतिमा को हम देखते हैं तब हमारे सामने आत्मा का सर्वोच्च स्वरूप उनका दर्शन होता है। आत्मा की जो सर्वोच्च स्थिति है उस सर्वोच्च स्थिति कैसी होती है उसका दर्शन हम परमात्मा की प्रतिमा को होकर दर्शन करते हैं तब होता है। एक दर्शन करने वाला जब परमात्मा की प्रतिमा को दर्शन करता है तो संभव है कि उस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बन सकता है, लेकिन हमारे मन में ऐसे भाव आने चाहिए परमात्मा के दर्शन के अवसर पर हमारे मन में ये भाव आने चाहिए कि परमात्मा जिन्होंने राग और द्वेष के सभी बंधन को हटा दिया है, आत्मा को निर्मल कर दिया है, आत्मा पर अब कुछ भी बंधन नहीं पड़ेगा। आत्मा पर बंधन डालने वाला सबसे कटु कर्म है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के बारे में हम लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से काफी गंभीर विचार किया है, समय समय पर मोहनीय कर्म की बात भी की है। और मोहनीय कर्म का अर्थ है राग द्वेष, जिसमें राग और द्वेष है, जहाँ राग और द्वेष है, जब भी राग या द्वेष है तो मोहनीय कर्म अवश्य है। और ये जो परमात्मा की हम बात कर रहे हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जो बात कर रहे हैं उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन इस कल्पसूत्र में कहा किया गया है। और जब हम कल्पसूत्र का श्रवण करते हैं तो महावीर स्वामी के जीवन की घटनाओं का मात्र श्रवण नहीं करते हैं, एक आत्मा की एक सामान्य अवस्था से लेकर परमात्मा तक पहुंचने की एक महायात्रा है, उस महायात्रा का श्रवण करते हैं। नैसार के भव में महावीर स्वामी का जो जीव था उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं था। वो एक अत्यंत सामान्य लकड़ी काटने वाला एक व्यक्ति था। उसके पास न धर्म का बोध था, न शास्त्र का बोध था, न गुरु का समागम हुआ था, कुछ भी नहीं था, अत्यंत सामान्य व्यक्ति। आज की अपेक्षा से हम तुलना करें तो शायद हमसे भी 1-2-4 श्रेणी नीचे। हमें तो परमात्मा के नाम, उनके गुण, उनके स्तवन, उनके स्तोत्र, उनके शास्त्र, उनका यत्किंचित बोध है। लकड़ी काटने वाले को, नैसार को कुछ भी बोध नहीं है, एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति था। जब परमात्मा की स्तुति करते हैं तब स्तुतिकार भक्त परमात्मा के सामने बैठ कर के स्तुति करते हुए कहते हैं कि बालपणे आपण बनने सस्ने ही हता रमता नव नव वेश। बचपन में मतलब कोई ऐसा भाव रहा होगा, भूतकाल की जब हम बात करते हैं तो कहता है वो भक्त कवि कहते हैं परमात्मा के सामने बैठ करके अपने हृदय को खोल करके अपनी भावनाओं को मुक्त करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, यदि हम भूतकाल की तरफ नजर दौड़ाएं, पूरे भूतकाल के इस भव के भूतकाल की नहीं अनंत भव के भूतकाल की तरफ मैं देखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि कोई ऐसा भव रहा होगा हम और आप, मैं और आप बचपन में साथ में खेले होंगे, हम दोनों मित्र रहे होंगे, हम दोनों ने खेल खेले होंगे, भोजन किया होगा साथ में, साथ में हम घूमे होंगे। बालपणे आपण बनने सस्नेही हता रमता नव नव वेश। हम लोगों ने अलग 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 किस्म की रमत खेल खेले होंगे, पर ऐसी कौन सी घटना घट गई कि आप पाम्या प्रभु साईं ने हूँ रहो एना ए वेश। हे परमात्मा, ऐसी कौन सी घटना घट गई कि आप तो ये जो भवचक्र का परिभ्रमण है उस भवचक्र के परिभ्रमण में से बाहर निकल गए और प्रभुता यानी परमात्मत्व को प्राप्त हो गए और मैं आज भी वही वेश में घूम रहा हूँ। भक्त कवि का ये परमात्मा के सामने अपने भूतकाल का और वर्तमान काल का ये बयान है और हम सब लोगों का भी वही है। यदि हम थोड़ा चिंतन करें, निष्ठा से चिंतन करें तो हमारे सामने भी यही बात आएगी कि हे परमात्मा, हम भी कभी आपके साथ खेले होंगे, हमने भी आपके साथ भोजन किया होगा। क्या ऐसी बात बन गई, कौन सी ऐसी बात बन गई कि आप आज प्रभुत्व को प्राप्त हो गए, आप आत्मा से परमात्मा बन गए, आप जीव से शिव बन गए। मैं वही अवस्था में आज भी घूम रहा हूँ। पहले दिन मैंने एक बात कही थी, इसका जवाब, इस प्रश्न का जवाब उस बात में निहित है, उसमें छिपा हुआ है। एक जैन साधु जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है उपमिति भव प्रपंचा कथा। भव यानी संसार, प्रपंच यानी विस्तार, कथा यानी कथा, कि संसार के विस्तार की कथा। जब कथा लिखने का प्रारंभ किया, इस कथा के लेखक ऑथर सिद्धर्षि गणी, उस सिद्धर्षि गणी ने प्रथम प्रस्ताव में अपने ही जीवन की घटनाएं लिख दी। लिखते हुए कहते हैं कि मैं भिक्षुक था, मैं एक भिक्षुक था, भीख मांगने वाला था, भीख मांगता था, लोगों के घर जा करके, घर के दरवाजे पर जा करके हाथ जोड़ जोड़ करके अत्यंत विनम्र भाव से भिक्षा मांगता था। लोग मुझे धुतकारते थे, लोग मुझे बता देते थे, गालियां देते थे, मुझे कहते थे कि यदि अभी तो आप जुवान हो, काम कर सकते हो, काम करो, भीख मांगना कैसे आपको अच्छा लगता है, यहाँ क्यों आए हो? भगा देते थे। मेरी हालत ऐसी थी कि भीख मांगने पर भी भिक्षा मिलती नहीं थी, और कभी कभी तो मैं जब चल जाता था, गलियों में घूमता था, तो मेरे पीछे कुत्ते भौंकते थे, कुत्ते भौंकते थे। मैं डर जाता था, मैं भी दौड़ता था, फिर भी कुत्ते मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते मुझे और दौड़ाते थे। मैं गलियों में घूमता था, तब गलियों में बच्चे लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, मुझे देखकर कहते थे कि अरे वो आया, देखो वो आया, कैसा है, इनका रूप देखो, काला काला है, फटे हुए कपड़े हैं, दाढ़ी के बाल बढ़ गए हैं, पेट देखो तो हड्डियां दिखाई दे रही है, और मेरे सामने पत्थर फेंकते थे, मुझे डराने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं केवल वो बात सहन करता गया। एक दिन चलते 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 मैं राजमहल के दरवाजे तक पहुंच गया। मुझे लगा कि यहाँ जाने से शायद मुझे कुछ मिल जाए, और कुछ मिलने की अपेक्षा से गया। लेकिन वहां जो द्वारपाल, जो रक्षक खड़ा हुआ था, जो सैनिक खड़ा हुआ था, उसने मुझे डंडा दिखा करके कहा कि जाते हो कि नहीं, जो जितनी हड्डियां बची है वो भी टूट जाएगी, भागो यहां से। मैं डर करके भागता था, वापिस लौटता था, फिर गलियों में घूमता था, फिर कुछ नहीं मिलता था। कभी कोई दयावान मिल जाता था, कुछ भोजन में मिलता था, तो मेरे पास एक टूटा फूटा एक पात्र था, और उस पात्र में वो भोजन डालते थे, बदबू आती थी भोजन में, लोग मुझे वही खाना देते थे जो खाना फेंकने लायक हो। लोग ये सोच करके कि ये बचा हुआ है, फेंकना है, फेंकने की बजाय इसके अंदर डाल दो, कभी कभार मिल जाता था। वो खाना खाता था तो भूख और भयंकर हो जाती थी, खाना अंदर खाता था, भोजन थोड़ा बहुत अंदर जाता था, और भूख परेशान करती थी। और उस वक्त मेरे सामने, मुझे ये लगता था, मेरे पीछे जो कुत्ते भौंकते थे, मुझे बहुत अंदर से दया आती थी कि कोई मुझे नहीं देते तो ये कुत्ते को तो क्या देते होंगे, तो मुझे जो मिलता था उसमें से थोड़ा बहुत मैं कुत्ते को दे देता, कुत्ते शांत हो जाते थे, खा लेते थे। लेकिन वही घटनाक्रम, मांगना, मांगने पर भी नहीं मिलना, बच्चों के द्वारा पत्थर फेंके जाना, कभी कुछ मिल जाए तो भूख और तेज हो जाना, कुछ मिले तो उसमें से कुत्ते को देना, ये उनका नित्य क्रम बन गया था, आदि बन गया था। वो बस वो ये समझता था कि यही मेरा जीवन है। ये घटना उन्होंने अपने बहुत बहुत विस्तार से लिखी है। कभी कभी मन में ये आ जाता था, कभी कभी वो गलियों में घूमता घूमता पुनः वो दरवाजे पर पहुंच जाता था, राजमहल के दरवाजे पर पहुंच जाता था। एक बीच में एक बहुत बड़ी पानी की खाई आती थी, उसको भी लांग करके वहां पहुंचने की कोशिश करता था। वही सैनिक वहां खड़ा रहता था, वही मुझे फिर धमकाता था, फिर बताता था, फिर आता था, फिर ये क्रम नित्य हो गया। एक बार कुछ ऐसी घटना घट गई कि आज राज मंदिर के द्वार पर पहुंच गया था, वहां पहुंचा तो वो जो हमेशा चौकी करने वाला जो दरवान था वो वहां नहीं था, वहां दो और दरवान थे। انہوں نے کہا کہ آج آپ چاہو تو اندر جا سکتے ہو، کیونکہ ہمیں آپ کے جو یہ آپ کا یہ جو سوروپ ہے اس کو دیکھ کر کے دیا آ رہی ہے، آج ہم تھوڑی کھن کے لیے یہاں نیوکت ہوئے ہیں، ہمیں یہاں ڈیوٹی ملی ہے، آپ اندر جانا چاہتے تو جا سکتے ہو. اور میں اندر چلا گیا، مجھے اندر جانے کا اوسر مل گیا. اس اندر سے پرویش کیا میں نے تو اوپر اس راج محل کے ساتویں منزل پر راجا بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر میرے پر پڑی. نظر پڑی ہے، یہ پوری گھٹنا منتری دیکھ رہے ہیں. منتری کو پہلے آشچریہ ہوا ہے کہ ایک آدمی اندر کیسے گھس گیا جن کو آنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی وائٹ ہاؤس میں گھس جائے تو کتنی بڑی گھٹنا مانی جاتی ہے. ویسے ہی گھٹنا کا بیان آج سے 1300 سال پہلے یہ سدھر شری گنی نے اپنے جیون کی گھٹناؤں کو بتاتے ہوئے لکھا کہ بھئی میں اندر پہنچ گیا، اس سمے جو راجا جی تھے ان کی درشٹی میرے پر پڑی، میں اتینت خوش ہو گیا اور ہمارے دونوں کی درشٹی کا ملن ہوا. مجھے اس کھن یہ پتا لگ گیا کہ اب کچھ نئی گھٹنائیں گھٹنے والی ہیں. ساتھ میں کھڑے ہوئے منتری نے یہ ساری گھٹنا دیکھی ہے، ان کو بھی آشچریہ ہوا کہ ایک آدمی اندر کیسے گھس گیا. لیکن جب ہماری دونوں کی درشٹی کا ملن ہوا، ملن دیکھ کر کے منتری جی نے ترنت اپنا وچار اپنا بھاؤ بدل دیا، ان کے منہ پر ایک دم پرسنتا آ گئی کہ ہمارے راجا کو جو مانیہ ہے وہ ہمیں بھی مانیہ ہونا چاہیے. راجا جی نے سوئم ان کو درشٹی پات کر کے اندر آنے کا سواگت کیا ہے، اندر پدھارنے کا سواگت کیا ہے. بات آگے چلتی ہے. بات وہ جو منتری ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے پاس چلو، میں آپ کو میرے گھر لے جاتا ہوں اور میں آپ کو بھوجن کراتا ہوں، آپ یہ اپنا ٹوٹا پھوٹا جو پاتر ہے وہ مجھے دے دو. تب وہ بھکشک سوچتا ہے، آپ اس گھٹنا کے ایک ایک پرسنگ کو تھوڑی کھڑوں کے لیے یاد رکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کتھا میں اتنا بڑا رہسیہ چھپا ہوا ہے، اتنا بڑا رہسیہ چھپا ہوا ہے کہ ہماری آتما کا وکاس اور ایک سامانیہ آتما سے پرماتما بننے کی کتھا، اس کے بھاؤ، اس کا آرمبھ کیسے ہوتا ہے وہ پتا چلے گا. منتری کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا پھوٹا پاتر ہے وہ مجھے دے دو. اور انہوں نے اپنی جو لڑکی تھی اس لڑکی کو بلا کر کے کہا کہ بیٹی اپنے پاس سورن کے پاتر ہیں، سونے کے پاتر ہیں، وہ لے آؤ. ایک اتیتھی آئے ہیں جس اتیتھی کو ہمارے راجا نے درشٹی پات سے ان کا سواگت کیا ہے، تو ہمارا کرتویہ ہے کہ ہم اس کا بھی سواگت کریں. یہ گھٹنا گھٹ رہی تھی، یہ وہ بھکشک سوچ رہا تھا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، میں جگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا ہے. اور آج تو ابھی تو یہ میرے پاس سے ٹوٹا پھوٹا یہ میرا پاتر لے لیں گے اور پھر کہیں گے کہ جاؤ یہاں سے بھاگو، تو میرے پاس جو سمپتی ہے میری وہ ساری سمپتی لوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیا کروں گا میں. تو میں نے تو ہمت دکھا کر کے منتری جی کو کہا کہ منتری جی آپ کھانا کھلانا چاہتے ہو تو کھلاؤ، پر میں پاتر نہیں دوں گا آپ کو، میرا پاتر میں آپ کو نہیں دوں گا، سونے کے پاتر میں مجھے بھوجن نہیں کرنا ہے، سونے کے تھالی میں، سونے کے کٹوری میں، سونے کی چمچ سے، سونے کے گلاس میں کچھ بھی اپیوگ نہیں کرنا ہے، مجھے تو آپ میرے پاتر میں بھوجن دینا چاہتے ہو. بہت سمجھاتے ہیں، नहीं समझता है, फिर भी वो अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी कुछ खाना ले आओ, अभी उनको हमारे पर भरोसा नहीं पड़ रहा है, लेकिन खाना तो खिलाना चाहिए। खाना खिलाया, धीरे 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 बहुत सारी घटनाएं वहां लिखी गई। बाद में कहते हैं कि इस द्रमक को तीन बात, तीन प्रकार की बातें वहां हुई। उनको सबसे पहले पानी पिलाया, आंखों में अंजन डाला और भोजन करवाया। तीनों का जो नाम दिया है वो अद्भुत है। वो कहते हैं कि तत्व प्रीति कर जल पिलाया, तत्व प्रीति कर जल, जल का नाम रखा है कि जिस जल तत्व को, तत्व के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाला जल आंखों में अंजन डाला, विमला लोक अंजन, कि जो जैसा है वैसा दिखाई दे वैसी। और तीसरा कहा कि महाकल्याण कर भोजन। धीरे धीरे पूरी घटनाएं बदलती गई। उनको लगा कि मैं इन लोगों पर नाहक बेकार किया, अविश्वास कर रहा हूं। उन्होंने स्वयं अपना पात्र फेंक दिया और वो मंत्री का अत्यंत प्रिय भी बन गया। ये ऐसी बात करते करते घटना पूरी करते, लेकिन इस घटना के कहने के बाद हमारे तो पल्ले कुछ पड़ता नहीं है कि ये क्या कहा, ये ऐसा कहने का क्या मतलब था। फिर उनके सारे रहस्य को खोलते हैं चित्तर्षिगण। वो कहते हैं कि द्रमक भिक्षुक भीख मांगने वाला वो है जिसका हृदय भिक्षुक है, जिसका हृदय भिक्षुक है वो फिर मैं भी हो सकता हूँ, वॉरेन बफेट भी हो सकता है, बिल गेट्स भी हो सकता है, कि जिसको अभी और चाहिए और चाहिए और की अपेक्षा वो घर घर भटकता है। जिसका हृदय भिक्षुक है वही भिक्षुक है, वो भीख मांगने वाला भिक्षुक नहीं है। भीख मांगने वाला तो व्यवहार की दृष्टि से भिक्षुक है, बाकी हम सब भिक्षुक है। वो कहते हैं कि दर दर भटकता हुआ मैं भीख मांगने के लिए निकलता था, उसका मतलब कि मैं प्रयास करता था, पुरुषार्थ करता था, तब भी मैं जो चाहता था वो नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है? हम जब आए थे तब शुरू किया था, तब ये था कि महीने में हमें 5-10 हजार डॉलर मिल जाए तो हमारी गाड़ी दौड़ने लगेगी, और 5-10 लाख डॉलर मिलने लगे महीने में तब भी गाड़ी वही की वही लग रही है, और 5-10 लाख की बजाय 50-60 लाख डॉलर पर मंथ के मिल जाए फिर भी लगता है कि बहुत कम है, अभी भी कम है। तो कहते हैं कि हम सब द्रमक हैं, हम सब बिक चुके हृदय से, हमारे मन में जब भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है तो भूख बढ़ने लगती है। जो वो कहा था कि कुछ जूठा बासी भोजन मिल जाता था तो वो जूठा बासी भोजन वो करने के पश्चात भूख और बढ़ जाती थी। तो भूखा और वासी और जूठा भोजन का मतलब है कि आज हम जो भी खा रहे हैं वो हमारी आज की कमाई नहीं है, वो हमारे पूर्व भव की कमाई है, इसलिए हमारे लिए तो आज जो हम भोगत रहे हैं वो सभी वासी है। एक लोग, एक भाई या बहन मुझे कह रहे थे कि मैं कोई वासी नहीं हूँ, मैं न डेरा वासी हूँ न सानक वासी हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तब मेरे मन में बात आई थी लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। वो जवाब मैं आज दे रहा हूँ कि हम सब वासी हैं, हम ताजे कहाँ हैं, हम जो भी खा रहे हैं आज, हम जो भी आज हैं वो केवल हमारी वासी पूंजी का भुगतान कर रहे हैं, वासी भोजन कर रहे हैं। हमने उस वासी भोजन में से निकलने का कोई प्रयास ही नहीं किया है, हमारे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वो कहते हैं सिद्धर्षि गणी, वो कुत्ते कौन थे? क्योंकि वो और कोई नहीं है हमारे सगे। जब भी आपको कुछ मिल जाता है तो तुरंत फोन करेंगे कि अरे महेंद्र भाई आपका तो बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया है। उसके पहले कभी तक फोन नहीं करते। या आपके घर नई कार आ जाए, मर्सिडीज आ जाए या लेक्सस आ जाए या BMW आ जाए, या आप कोई बहुत बड़ी कोठी खरीद लो जिसका फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड बहुत बड़ा हो, या आप जगत की दृष्टि से बहुत धनवान हो जाओ, तब आपको लोग महेंद्र, अरे वो महेंद्र ने वहां घूमता था वो ने, वो नहीं बोलेंगे ऐसे। वो कहेंगे कि अरे वो महेंद्र भाई बहुत बड़े। तो वो सब कह रहे हैं कि हमारे पीछे भौंकने वाले और कोई नहीं, वो हमारे सगे, और उसी के प्रति दया आती है हमें कि चलो थोड़ा बहुत दे दे, हमारे पास बहुत है। फिर भी हम, हमारे पास जो है वो जानते हैं कि हम कुछ भी साथ में नहीं ले जाने वाले। आपने कभी किसी को देखा है कि वो अपने साथ सब कुछ लेकर गया हो? फिर भी हम हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारी बेटी को जीवन के अंतिम श्वास तक देना नहीं चाहते। क्या करते हैं कि भाई हम साथ में रखेंगे, अंतिम क्षण देखेंगे। कबीर ने तो इसने तक कह दिया कि भाई आप लोग समझो, जो श्वास है उसका भी विश्वास मत करो। जो श्वास अंदर गया है वो बाहर निकलेगा ही, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। श्वास का भी विश्वास नहीं करने की बात का मतलब है कि प्रतिक्षण जागृत रहो। वो कहते कि बार बार में वो मंदिर तक, वो राजद्वार के, राजमहल के दरवाजे तक गया, मतलब मैं अपने कर्मों के क्षय करते करते कभी कभी वहां तक यथा प्रवृत्तिकरण करता हुआ ग्रंथि भेद की अवस्था तक पहुंच गया था, लेकिन ग्रंथि भेद नहीं कर पाया था। ग्रंथि मतलब गांठे, गांठे मतलब हमारे अंदर पड़ी हुई क्रोध, मान, माया और लोभ की गांठे। हम लोग समझते हैं क्रोध भयंकर है, क्रोध खराब है। खराब ही है, अच्छा नहीं है, लेकिन उससे भी भयंकर कोई चीज हो तो अहंकार है। एक वैज्ञानिक एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसा करके जाऊं कि पूरी मानव जात आने वाले समय में मुझे याद करती रहे। बहुत सोचने लगा। ये उनका एक स्वप्न था कि कोई ऐसी खोज कर लूं, कोई ऐसी खोज कर लूं और जिसके कारण पूरी मानव जात मुझे हमेशा के लिए याद करती रहे, जैसे हम आइंस्टाइन को याद करते हैं, जैसे हम गैलीलियो को याद करते हैं, जैसे हम और वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये खोज करके पूरे विश्व को एक नई दिशा दी, मानते हैं हम नई दिशा दी, उन सबको हम याद करते हैं। वैसे ही ये वैज्ञानिक खोज विचार करने लगा कि मैं ऐसी कोई खोज कर लूं। उसके मन में ये आया, पूरी अवस्था बनने लगी थी तो उसके मन में ये आ गया एक दिन सुबह बैठा हुआ था कि शायद मेरा मृत्यु नजदीक आ जाए और यम दूत उस समय मुझे लेने आएंगे। लेने तो आने वाले ही है, उसमें तो कोई मिथ्या कर नहीं सकता है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो निश्चित है। तो मैं यम को भी ऐसे चक्कर में डाल दूं कि वो वापिस चला जाए। ऐसी बात सोचते हुए उनके मन में आया कि मैं, मेरे जैसे ही अनेक रूप बना सकूं, ऐसी कोई फॉर्मूला खोज निकालो। इस तरह से आज हम एक पेपर जेरोक्स मशीन पर रखते हैं और उसकी कॉपी, जेरोक्स कॉपियां निकल जाती हैं, तो ये जज करना मुश्किल हो जाता है। यदि कलर जेरोक्स से निकली हो तो, या ब्लैक एंड व्हाइट की ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकली हो तो ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल कौन सी थी और कॉपी कौन सी, यदि इंडिकेट न किया हो तो। तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरे जैसे और रूप बना लूं, اس نے ایک دن بیٹھے ہوئے کھوج نکالا, اپنے ہی جیسے اور 10 روپ اس نے نرمت کر دیے, بنا لیے, کھوج میں سفل ہو گیا. اور ایک دن آ گئے یمراج آ گئے اور کہا کہ بھائی چلو. تو یمراج چکر کھا گئے, یہ 11 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, 11 میں سے کس کو لے جاؤں میں, مشکل ہو گیا لے جانا. وہ واپس چلے گئے, ویجانی خوش ہو گیا, بچ گیا, میں نے یم کو بھی بنا دیا, جو مجھے بنانے والے تھے میں نے ان کو ہی بنا دیا. پر یم واپس گئے, ان کو لگا کہ یہ تو بہت گڑبڑ والی بات ہے, واپس جانا ہی پڑے گا اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. وہ آئے واپس, وہ 11 لوگ وہاں کھڑے تھے, اس کو کہا, 11 لوگوں کو کہا کہ تمہارا جو کریشن ہے وہ ادبھوت ہے لیکن اس میں ایک غلطی رہ گئی ہے. تو اوریجنل ویجانک تھا, وہ ایک دم کھڑا ہو کر کے بولا کہ میری کھوج میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی ہے, کہ چلو آ جاؤ, چلو غلطی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ مانتے ہوں کہ میں مہان ہوں, میں جو نرنے لیتا ہوں, میں جو بائی لوز بناتا ہوں, میں جو کرتا ہوں اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے چلو. اور مول آدمی پکڑا گیا, لے کر کے چلے گئے, اہنکار نے ان کو پکڑوا دیا. ایگو اہنکار تھا, ایک ایسا اہنکار تیسرے بھاؤ میں مرچی کو آ گیا تھا, ایک ایسا اہنکار آ گیا تھا. جب بھرت چکرورتی وندن کرنے آئے تھے, پہلے کبھی بھی وندن کرنے نہیں آتے تھے, آج پہلی بار جب سادھو ویش سے برش ہو کر کے ایک جگہ پر آشرم میں براجمان تھے, اس سمے بھرت چکرورتی آئے, نمسکار کیا. نمسکار کی پوری ودھی ہے 3 بار نمسکار کرنا, 3 بار پردکشنا کرنا, پھر ان کے سامنے بیٹھ کر کے شاتا وغیرہ پوچھنا. گرو جی کو پوچھ کہا, گرو جی آج خوش ہے کہ آج میرے پتا جی اتنے برسوں کے بعد مجھے وندن کرنے آئے. تب بھرت چکرورتی کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو وندن کرنے آیا ہوں, اس کے پیچھے ایک کارن ہے. کارن یہ ہے کہ میں نے پرماتما رشبھ دیو کو ایک پرشن پوچھا تھا کہ ہے بھگوانت, آپ کی یہ پرشدا ہے, آج کا یہ یوگ ہے, یہاں جتنے لوگ ہیں اس میں سے کوئی ایسا آدمی ہے, کوئی ایسا جیو ہے, کوئی ایسی ویکتی ہے جو فیوچر میں بھوشیہ میں تیرتھنکر ہونے والی ہو, ایسی کوئی آتما ہے تو ان کے پاس جا کر کے میں نمسکار کروں, کیونکہ اس سمے پر میں رہوں یا نہ رہوں لیکن آج تو وہ دربیا سے تیرتھنکر ہی ہے. دربیا تیرتھنکر ایک ٹیکنیکل ٹرم کی بھوشیہ میں جو کریا ہونے والی ہے اس کو آج سے بھانپ لینا, اور آج جو استھتی ہے اس استھتی کو بھی بھوشیہ میں ہونے والی استھتی کے روپ میں ماننا, وہ دربیا نکشیپ ہے. اور دربیا نکشیپ کے آدھار پر وہ کہتے ہیں کہ آپ دربیا سے تیرتھنکر ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ مہاویر اور رشبھ دیو پرماتما نے یہ کہا ہے کہ آپ ترپشت واسودیو بھی ہونے والے ہیں. تب یہ مریچی کے من میں اہنکار آ گیا کہ ہمارا کل اتنا مہان ہے, میرے دادا تیرتھنکر, میرے پتا جی چکرورتی, میں واسودیو بنوں گا, میں انتم تیرتھنکر بھی بنوں گا, ہمارا پریوار اس کے ایک ایک ویکتی مہان ہے. اہنکار آ کر کے ناچنے لگے, اور اسی سمے انہوں نے نیچ گوتر کرم کا بند کیا, اہنکار کیا, دوش کا سیون کیا, اور دوش کا سیون کرنے کے کارن وہ जिस कर्म का उन्होंने बंद किया उसी कर्म का उदय अंतिम भव में आया। देवानंदा की कुक्षी में 82 दिन तक रहना पड़ा और उसके बाद त्रिशला क्षत्रियान की कुक्षी में आना पड़ा। कर्म का ये स्वभाव है, कर्म कभी भी ये नहीं सोचता है, कर्म महाराजा कभी ये नहीं सोचते कि ये तीर्थंकर का आत्मा है या प्रेसिडेंट का आत्मा है या बॉस का आत्मा है या किसी का, ये कोई उसमें अंतर नहीं। जो जैसा करता है वैसा पाता है, उसके लिए ये भेद नहीं है कि वो मन से किया है या काया से किया है या वचन से किया है। आपने मन से कर लिया तब भी कर्म का बंद होगा, वचन से कर किया तब भी कर्म का बंद होगा, काया से किया तब भी कर्म का बंद होगा। तो ये कहते हैं वह सिद्धर्षि गणी कि मैं कई बार वो वहाँ द्वार तक गया, यथा प्रवृत्तिकरण किया मैंने, वहाँ तक पहुँचा, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं थक जाता था। इसलिए मुझे थका हुआ देखकर द्वारपाल मुझे डराते थे, मुझे बताते थे कि तुम्हारे जैसे डरे हुए आदमियों के लिए इस मंदिर में प्रवेश संभव नहीं है। उसका मतलब है कि हम कभी कभी धर्म करने की सोचते हैं, पर जब धर्म करने का अवसर आता है उस समय हम थक जाते हैं, बातें बहुत कर लेते हैं लेकिन सही वक्त आने पर हम थक जाते हैं। हम ये कहते हैं कि आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में देखेंगे, अभी तो हम युवान हैं, अभी तो हमारे बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, शायद कल रिसेशन आ जाए तब छोड़ देंगे। पर वो होता ही नहीं है, रिसेशन आने पर होता है कि भाई अभी थोड़ा और ठीक ठाक कर ले, बाद में जब इसमें से निकल जाएंगे पर फिर तेजी आ जाएगी निकल जाएंगे। ये मन की धारणाएं हैं, इसलिए कहते हैं कि जब धर्म करने की बात आती है तब हम थक जाते हैं, लेकिन कभी हमारे राग और द्वेष, जो दो सिपाही वहां खड़े थे वो राग और द्वेष के क्षय रूपी सिपाही थे, उन्होंने देखा कि इनके कुछ कर्म कम हुए हैं और उस समय वो महाराजा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। उसका मतलब वो दृष्टि मतलब वो महाराजा मतलब सुस्थित महाराजा यानी परमात्मा, परमात्मा का और हमारा जब मिलन होता है तो वो मिलन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। जिस दिन हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, जिस दिन हम परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं, भाव से नमस्कार करते हैं, तभी से हमारा अभ्युदय शुरू हो जाता है। फिर भी जब कोई हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं इसके प्रति हमें शंका के भाव होते हैं। वो मंत्री उसके लिए अच्छा करना चाहते थे, वो उनको उनके फटे टूटे पात्र के बजाय उनके बदले में सुवर्ण का पात्र दे रहे थे, तभी उनको शंका हो रही थी। हमारा भी यही स्वभाव है कि हमारे लिए कोई अच्छा काम करे तो हमें पहले संशय होता है कि ये क्यों अच्छा काम करते होंगे। आज वो दो एक की बजाय दो टुकड़े रख रहे हैं, मिठाई के खिला रहे हैं, जरूर कुछ दाल में काला है, मैं और आप सब यही सोचते हैं। क्योंकि संसार का ये नियम है कि संसार में और खास करके इस युग में, ये घटना परमात्मा महावीर के जीवन में भी हुई थी, जब माता के गर्भ में थे तब परमात्मा तो तीन ज्ञान लेकर आए थे, माता के गर्भ में भी तीन ज्ञान था, तब माता के गर्भ में रहे हुए थे तब परमात्मा को ये भाव आया कि मेरे हलन चलन से, मेरे हिलने डुलने से माता को कष्ट होता होगा, तो मैं माता को कष्ट न हो इसके लिए हलन चलन बंद करूं, अपने सारे अंग प्रत्यंगों को परमात्मा ने गर्भावस्था में बंद कर दिया, हलन चलन बंद कर दिया। थोड़ी देर हुई, एक आध दो घंटा बीत गया, फिर परमात्मा के मन में ये बात आई कि लाओ देखो तो सही बाहर की हालत क्या है। परमात्मा ने उपयोग रख करके देखा तो पता चला कि राजमहल में तो अत्यंत शोक व्याप्त हो गया है, लोग रड़ रहे हैं, माँ रड़ रही है कि मेरा गर्भ निर्जीव हो गया, उसमें से जीव चला गया, वो न हिलता है न डुलता है, ये बहुत ही अमंगल स्थिति का निर्माण हो गया है। राजा गए, राजा ने कहा कि वैद्यों को बुलाओ, पूरी चहल पहल दुख शोक मग्न वातावरण देखकर परमात्मा ने उसी समय अपना पैर हिलाया, पैर हिला करके अपने अस्तित्व का उनको संकेत दिया। और जैसे ही पैर हिलते हुए अनुभूत किए वो माता ने, तब माता ने आनंद का महोत्सव मनाया कि वाह, मेरी शंका थी, कुशंका थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब परमात्मा ने ये निर्णय किया कि आने वाला समय ऐसा आएगा, ये जो पांचवा आरा आएगा वो पांचवा आरा ऐसा आएगा कि आप किसी के लिए अच्छा करोगे तब भी वो लोग आपके प्रति बुरी भावना करते रहेंगे। लेकिन परमात्मा कहते कि उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छाई को छोड़ दे, अच्छाई को तो करते ही रहना है, और अच्छाई करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। और जब लोग अच्छाई की टीका करते हैं, आलोचना करते हैं, तब हमें जागृत रहने का, अहंकार से मुक्त रहने का अवसर मिलता है, तभी हमें पता चलता है कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मुझे और भी रास्ता काटना है। और उस समय परमात्मा ने ये संकल्प, दूसरा संकल्प ये किया कि मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा मुख नहीं देखा है माता या पिता ने, और उनको इतना दुख हो रहा है, तो जब मेरा जन्म होगा, मुझे देखेंगे तो उन लोगों का मोह तो और तीव्र हो जाएगा, और उस समय शायद मैं दीक्षा का नाम लूंगा, तो मेरी ये दीक्षा की बात सुनकर उसको बहुत गहरा सदमा, बहुत गहरा आघात पहुंचेगा, और संभव है उस आघात में उनकी मृत्यु हो जाए। और आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि महावीर की बात से माता पिता को दुख हुआ और उस दुख के कारण अवसान हो गया, तो मेरी बात से अवसान हुआ, ऐसी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो ये बात करती रहेगी। इसलिए जब तक जिंदे हैं तब तक मैं दीक्षा का नाम नहीं लूंगा, ये उनके संकल्प था। इसलिए माता पिता के मृत्यु के बाद ही परमात्मा ने दीक्षा ग्रहण की। हमारे सामने ये अवसर आ रहा है, आज का दिन है, कि जिस दिन में परमात्मा, जिन्होंने समग्र सृष्टि के समस्त जीवों के कल्याण की कामना की, उनके जन्म कल्याण मनाने का, उनके जन्म का अवसर मनाने का ये हमारे सामने अवसर आता है। प्रश्न ये उठेगा कि ऐसे प्रसंग, ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वप्न लेकर के घूमने से क्या होगा। बात सही है, किंतु ये एक निमित्त बनता है, ये द्रव्य प्रसंग है, लेकिन द्रव्य प्रसंग से भाव में हम तल्ले जा सकते हैं, भाव में जा सकते हैं, हम ये भाव ला सकते हैं कि परमात्मा साक्षात यहाँ जन्म लेने वाले हैं, और हम उनके जन्म के अवसर पर साक्षात वहाँ उस जमाने में उस जगह पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन यहाँ हम आज परमात्मा के जन्म का, जिनका हमारे पर परम उपकार है, यदि वो मंत्री ने आंख में विमलालोकंजन नहीं आंजा होता, नहीं लगाया होता, तो द्रमक भिक्षुक को सही बात पता चलती ही नहीं। तो हमारे जो मंत्री अर्थात आचार्य, हमारे जो शास्त्रकार हैं वो सारे मंत्री हैं और उनके द्वारा दिया गया विमला लोक अंजन मतलब शास्त्र है, उस शास्त्र का अंजन हमारी आंखों में लगाया है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत भी बोध हुआ है। और वही बात यहाँ कही है, आज हम जब परमात्मा के जन्म कल्याणक को मनाने जा रहे हैं तो हमारा मन वचन और काया तीनों योग परमात्मा मय बनने चाहिए। और इस घटना को तीनों योग से, मनोयोग वचन योग और काय योग से तल्लीन हो करके हमें मनाना है। कोई ऐसा न सोचे कि ये तो बच्चों का खेल है, ये तो जो डेरावासी है वासी लोग है उनकी ये घटना है। कोई ये ना सोचे कि भाई पिछले साल भी देखा था तो बातें करेंगे, ऐसा भी ना करे, कोई बीच बीच में बात ना करे, बस जहाँ भी बैठे जैसे भी बैठे परमात्मा मय बनने की कोशिश करे। परमात्मा का साक्षात जन्म हो रहा है ऐसा भाव भाए तो हमारे कर्म खपेंगे, सम्यक दर्शन निर्मल होगा, सम्यक दर्शन की निर्मलता से परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कह करके यहाँ हम समाप्त करते हैं, बाकी की बातें आगे देखेंगे।